मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाति भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, अपन सब लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। अपना जीवन तब अच्छा बनता है जब अपने पास निर्मल दृष्टि हो, आत्मा का ज्ञान हो और अपना आचरण अच्छा हो। आचरण भी अच्छा बना लें अपन, अच्छी क्रियाएं भी कर लें, लेकिन यदि अपने अंदर आत्मज्ञान और दृष्टि की निर्मलता नहीं है तो वो अच्छा आचरण और ढेर सारा ज्ञान डिग्री जो अपन प्राप्त कर लेते हैं वो सब भी अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। ये अपन ने पिछले दिनों लगातार इस बात पे विचार किया है। जब जीवन में दृष्टि की निर्मलता आ जाती है तो अपने जीवन में आठ बातें अपने आप प्रकट हो जाती, आठ गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अपन बहुत निर्भय और निशंक होकर के धर्म के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अपने मन में फिर संसार की आकांक्षाएं इतनी नहीं होती कि हम सच्चे मार्ग को छोड़ दें। हम सच्चे मार्ग के एवज में भौतिक सुखों को नहीं चाहते। जो सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं उनका शरीर यदि मलिन भी होता है तो हम उसे देख करके घृणा नहीं करते। जिस रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर हम चल रहे हैं, ढेर सारे और भी रास्ते हैं जिनके बारे में भी लोग अपने तरह से अलग अलग हमें बताते हैं। 363 मत मतांतर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने जो सच्चाई का, वीतरागता का और अहिंसा का मार्ग चुन लिया है, हम उसी मार्ग पर विवेक पूर्वक बढ़ते चले जाते हैं। यह हमारे भीतर गुणवत्ता अपने आप दृष्टि की निर्मलता आने पर प्रकट हो जाती है। उससे बाद जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनके अपन को दोष दिख जाते हैं, लेकिन दोष देखने की इच्छा अपने अंदर नहीं होती। गुण और दोषों को अपन जानते हैं, लेकिन उसके दोष देख भी जाए तो किस अपेक्षा से अपन वो देखते हैं, उसमें से वो दोष निष्कासित करने के लिए देखते हैं। कोई अगर सच्ची श्रद्धा से, आत्मज्ञान से या कि सच्चे आचरण से विचलित हो रहा हो, गिर रहा हो, भ्रमित हो रहा हो, तो उसे संभालने के लिए अपने भीतर भाव उत्पन्न होता है। अपने साधर्मी के प्रति बहुत निस्वार्थ प्रेम अपने मन में अपने आप प्रकट होने लगता है, और जिस मार्ग पर वीतराग और अहिंसा को अपना करके हम चल रहे हैं, जहां कहीं भी अपन बैठते हैं वहां पर उसी का गुणगान करते हैं, वीतरागता का और अहिंसा का, अपने जीवन से भी और अपने वचनों से भी, अपने विचारों से भी। विचारों में वीतरागता है, क्रिया में भी वितरागता और अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अपने उठने बैठने खाने पीने आने जाने से प्रकट हो रहा है कि व्यक्ति वितरागता के मार्ग पर चल रहा है और जहां भी बैठेंगे उस वितराग या अहिंसा मार्ग की प्रशंसा करेंगे। ये सारी चीजें अपने आप प्रकट हो जाती, कहना नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई उसके भीतर ये सब चीजें आपो आप प्रकट हो जाती। आज अपन को चार चीजें तो अपन ने जान ली, उन पर विचार कर लिया है। आज अपन को जानना है कि अगर अपनी दृष्टि निर्मल हो गई है तो साधर्मी की या कि मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले की अपन गलतियां नहीं देखेंगे, दोषों को नहीं देखेंगे। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उपगूहण गोदु सव्य धम्मानम सो उपगूहण गारी सम्मादिक्षि मुनिदव। अगर कुन कुन स्वामी महाराज के चरणों में बैठते हैं तो इतनी बड़ी परिभाषा बता देते हैं कि अपन तो अपना मन सिद्ध भगवान की भक्ति में इस तरह लगाएं कि जिससे अपन भी सिद्ध बन जाएं, किसी भी सबके भीतर कर्मों के उदय से कोई ना कोई दोष विद्यमान है। 18 दोष सब संसारी जीवों को हैं, सिर्फ एक सिद्ध भगवान है। हमें भी सिद्ध बनना है दोषों से मुक्त होकर के, ये विचार करते हुए निरंतर अपना जीवन जिए तो वास्तव में सम्यक दृष्टि के तो उपगूहन अंग ऐसा ही होगा। लेकिन अब अपन इतनी ऊंचाई तो नहीं पा सकते, तो क्रम क्रम से चलने के लिए फिर समंत भद्र स्वामी के चरणों में बैठ करके भी अपन जानना चाहते हैं कि उपगूहन किसे कहेंगे। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयम वाचताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्ति उपगूहनम्। बड़ी आसान सी बात कह दी। ये मोक्ष का मार्ग या वितरागता का या अहिंसा का मार्ग स्वयं शुद्ध है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। लेकिन बाल और अशक्त जनों के द्वारा इसमें दोष लगा दिए जाते हैं। बाल का अर्थ अज्ञानी, जिनको अभी सही सही आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो सब। बाल मतलब छोटा नहीं, बाल का मतलब अज्ञानी है जिसे मालूम नहीं है। मालूम भी है लेकिन फिर भी जिसके अंदर अभी अहंकार बहुत है कि जानबूझ करके भी ऐसी क्रियाओं में लगा हुआ है जो उसके योग नहीं है, जिससे कि मोक्ष मार्ग और पूरी परंपरा खराब होगी ये जानता है, लेकिन फिर भी एक जिद है कि मैं तो ऐसा ही करूंगा। ऐसे व्यक्ति को बाल कहा। अशक्त, जिसकी अपनी मूल गुण 28 पालन करने की शक्ति नहीं है, वो थोड़ा बहुत मूल गुणों में कभी कदाचित दोष लगा देता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही दोष लग सकते हैं बाल और अशक्त लोगों के द्वारा। तब फिर क्या करना, वाचताम यत् प्रमार्जन्ति, अगर दोष लग जाए और तुम्हें दिख जाए तो उन दोषों की हंसी नहीं उड़ाना, किसी से कहना नहीं, जल्दी से अपने साधर्मी में से वो दोष प्रमार्जित करने की भावना रखना। ऐसा दृष्टि की निर्मलता हासिल करने वाला अपने भीतर भाव उत्पन्न करता है। अपन देखें कि अपने भीतर अगर दृष्टि की निर्मलता है तो अपने भीतर ऐसा भाव आता है कि नहीं। सबसे पहले किसी के भी अपने साधर्मी के मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के अपन दोष नहीं देखेंगे, झांकेंगे नहीं कि दोष दिख जाए, दोष देखने का इंटरेस्ट नहीं है। अगर कदाचित सामने सामने दिख जाए दोष तब फिर क्या कहेंगे, तब किसी से कहेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट हो गया, एक तो दोष नहीं देखेंगे, अगर दिख जाए तो क्या करेंगे, तो भैया कोई बात नहीं दिख जान दो, लेकिन कहना नहीं, डिंडोरा मत पीटना उन दोषों का। अब हमारी दीक्षा हो रही है कि कहें, तो अगर कहने की इच्छा है तो उसी व्यक्ति से जाकर के कहो या उसके गुरु से जाकर के कहो कि यह तो दोष मुझे दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका डिंडोरा पीटने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होगा, क्योंकि जानता है सम्यक दृष्टि परात्मनिंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद भावरे च नीचैर गोत्रस्य। अगर मैं दूसरे की निंदा और अपनी आत्म प्रशंसा करता हूं तो इससे मैं अपने ही नीच गोत्र का इंतजाम कर रहा हूं, दूसरे गुण स्थान तक ही नीच गोत्र बनता है, मिथ्यात्व के साथ ही बंधेगा, मेरे सम्यक दृष्टन को भी नष्ट करना पड़ेगा मुझे जब मैं निंदा करूंगा दूसरे की। जब जब भी मेरे द्वारा निंदा होगी तो मेरा सम्यक दर्शन भी नष्ट होगा और साथ में मुझे नीच गोत्र का बंध भी होगा। ऐसा दृष्टि की निर्मलता से जो संपन्न है वो विचार करता है और किसी के दोष एक तो देखने की इच्छा भी नहीं उसके अंदर, क्या करना आप जानो। अगर मालूम पड़ जाए कि ये दोष हैं तो उनको किसी से भी नहीं कहेगा, अपने भीतर ही रखे रहेगा। अगर कहने की इच्छा भी होगी तो अकेले में एकांत में जाकर के उसी व्यक्ति से कहेगा कि ऐसा आपके योग्य नहीं है या कि इस मार्ग के योग्य नहीं है, आपका क्या विचार है। और अगर सामने वाला अपने दोषों को स्वीकार कर ले तो 100-100 प्रणाम उसको, और अगर कहे कि ठीक है आगम में जैसा लिखा है वैसा वैसे ही मैं कर रहा हूं, अगर ऐसी जिद करे गलत होते हुए भी तो एक भी बार प्रणाम नहीं, चुपचाप निकल करके वापस आ जाएगा, पर बोलेगा कुछ नहीं, ना दूसरे से कुछ कहेगा, इतना ही संबंध रखेगा। दोष जान करके भी व्यक्ति कर रहा है, अगर अपने दोषों को जानता है और दूर भी नहीं करना चाहता तो उसके प्रति दूर की दुआ सलाम, दिख गए तो नमोस्तु, लेकिन हम आपसे अपना मोक्ष मार्ग नहीं बनाएंगे। कल लोग कह रहे थे कि ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करें, बहुत स्पष्ट उपगुहन अंग के अंतर्गत हमारे पूर्व में आचार्यों ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए, एक तो दोष देखना नहीं और अगर सामने सामने दोष दिखाई पड़ जाए तो जाकर के उसी से निवेदन करना बड़े प्रेम से और बड़े आदर से कि भगवान यह जो चीज मैं अज्ञानी हूं, मुझे समझ में नहीं आई, ये चीज ठीक है क्या, लगता है कि ठीक नहीं है, मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं है, तो सामने वाला भी सुन करके कहे कि आप ठीक कह रहे हैं, ये तो वास्तव में गलती ही है, ऐसा स्वीकार कर ले वे तो 100-100 दफे उसको प्रणाम, और अगर कहे कि ये कोई गलती नहीं है, मैं तो ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही लिखा हुआ है, अगर ऐसी जिद करे और आगम का अभिनय करे, आगम के अनुरूप अपनी क्रिया ना करे, तो फिर उससे अपन ज्यादा संबंध नहीं रखेंगे। ये उसके लिए उपगुहन अंग को पालन करने वाले, धारण करने वाले का कर्तव्य है। होता क्या है असल में कि जब हम दूसरे की गलती देखते हैं तो क्या होता, तीन चीजें एक साथ होती, अपनी गलती नहीं देख पाते, फिर गलती देखने की आदत तो बन जाती लेकिन दूसरे ही में है गलतियां, अपने भीतर की गलती नहीं देख पाते साथ साथ में, एक तो दूसरे की गलती देखने की आदत बन जाती और उसके साथ साथ अपनी गलती नहीं दिखाई पड़ती और साथ में दूसरे के गुण नहीं दिखाई पड़ते, तीन तीन चीजें एक साथ होती, ऐसे संस्कार अपने भीतर निर्मित होते चले जाते हैं कि फिर दोष दर्शन की प्रवृत्ति छिद्रान्वेषण हो जाता है, अपने अंदर आदत बन जाती है कि फिर जहां भी गलतियां हैं ठीक मक्खी की तरह, जैसे कि बहुत बड़ा बगीचा हो, बगीचे में क्या होता, फूल भी लगे हैं सुगंधित बहुत अच्छे और वहां पर कचरा कूड़ा और गंदगी भी पड़ी है, लेकिन मक्खी महारानी और भौरा अगर एक साथ जाएं, दोनों जन एंटर करें उसमें बगीचे में, तो भौरे महाराज तो जाकर के बैठेंगे फूलों पर, उससे पराग ग्रहण करेंगे, लेकिन मक्खी महारानी को फूल उल पसंद नहीं आएंगे, वो तो जितनी सड़ी गली गंदगी पड़ी होगी वहीं जाके बैठेंगे, फिर ऐसी प्रवृत्ति हो जाती मक्खी जैसी, अपने भीतर वही संस्कार बनते चले जाते हैं कि सिर्फ दोष दिखाई पड़ते, अपन दूसरे के गुणों को फिर देख नहीं पाते और अपने अंदर गुण ही गुण दिखते हैं, अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते जिससे कि उनको अपन निकाल सके। इतनी सारी चीजें इस दोष देखने की प्रवृत्ति से होती हैं, इस दोष देखने की प्रवृत्ति से अपन अपना आत्म विकास नहीं कर पाते, पर आत्मनिंदा अपने आप की प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना, इससे क्या होगा, ना आप अपना आत्म विकास कर पाएंगे ना दूसरे के आत्म विकास में आप सहयोग कर पाएंगे। एक बार की बात है, कटनी वाले पंडित जी थे तो वो बताते हैं, सुनाया उन्होंने महाराज जी के पास ही कि महाराज ऐसा हुआ एक बार, बोले सामायिक का समय हो गया था, हम सामायिक में बैठने वाले थे, बच्चे बहुत नाती वगैरह बहुत उधम कर रहे थे, तो हमने सबको समझाया, हमने कहा सुनो सब अब हम सामायिक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या होती है, बोले भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान का ध्यान करने से क्या होगा, हम भी भगवान बन जाएंगे, अच्छा ठीक, तो सब समझ लिया, लेकिन हमें क्या आदेश है, तुम लोग जब तक हम सामायिक करें उधम उधम मत करना, ठीक आप करो तो सामायिक, धीरे से उनने मन ही मन ऐसा कहा, और जैसे ही पंडित जी सामायिक में बैठे उनकी धमा चौकड़ी फिर शुरू, अपने खेल कूद में फिर से शुरू। अब पूरे जैसे तैसे 50 मिनट घंटे भर सामायिक में उन्होंने अपना मन लगाया और सामायिक से उठने के बाद फिर बच्चों को बुलाया, क्यों बच्चों हमने तुम्हें मना किया था ऊधम करने के लिए, फिर भी तुम ऊधम कर रहे थे हम जब सामायिक कर रहे थे। तो उसमें से एक जो छोटा वाला बच्चा था वो ताली बजा करके और कहने लगा, दादा तो आप कभी भगवान बन ही नहीं सकते। अब ले ये नई बात हो गई, दादा भगवान नहीं बन सकते, ये कैसे डिसीजन ले लिया आपने? तो बोलता कि आप सामायिक कर रहे थे कि हम हल्ला सुन रहे थे, हमारा उधम आपको दिख रहा था कि आपको अपनी सामायिक दिख रही थी, आप भगवान नहीं बन सकते। अर्थ क्या हुआ, आप आपकी अप्रोच क्या है? अगर आपकी गुण ग्राहिता है तो आपको गुण ही गुण दिखेंगे, और अगर आप छिद्रान्वेषण की आंख आपकी बन गई है तो सब जगह आपको दोष ही दोष नहीं होने पर भी दिखाई पड़ेंगे। ये अपने भीतर धीरे धीरे, जस्ट बी नॉट, हमको ईश्वर ने या कि अपने कर्मों से हम यहां पर किसी का निर्णय लेने के लिए पैदा नहीं हुए। वी आर नॉट बॉर्न टू सॉल्व द अदर्स प्रॉब्लम, हम यहां पर दूसरे की समस्याओं के समाधान के लिए पैदा नहीं हुए। हम यहां पर अपनी ही जीवन में जो दोष हैं उनसे मुक्त होकर के और अपनी प्योर स्टेज शुद्ध अवस्था, जो सिद्ध अवस्था है, उसको प्राप्त करने के लिए यहां पर पैदा हुए कि दूसरे का हिसाब किताब बनाने के लिए पैदा हुए? नहीं, ऐसा सोच करके सम्यक दृष्टि हमेशा अपने रास्ते पर सच्चे पर चलता जाता, अपने दोष देखता है और उनको धीरे धीरे निकालता रहता है। अगर कदाचित दूसरे के दोष भी दिख जाते तो सिर्फ उन दोषों को निकालने की दृष्टि से अपना साधर्मी मान करके, प्रेम होने की वजह से कि ये दोष मेरे साधर्मी में अच्छे नहीं लगते, इस दृष्टि से उनकी तरफ इशारा कर देगा, निकालो तो ठीक है और नहीं निकालो तो पहले ही से यहां थे, हम कौन का कर सकते, आपके अंदर तो दोष पहले ही से थे, हम क्यों अपना मन संक्लेशित करें, हम क्यों अपना मन खराब करें, ऐसा मान करके वो समता पूर्वक अपना अपने मार्ग पर, वितरागता के और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन कभी भी अपने साधर्मी को या सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को दोषी है ऐसा दूसरे से नहीं कहता। अपन कहते ना कि अपने घर की बात बाहर न कहो, अच्छो नहीं अपने भीतर ही भीतर निपटा लो। ये उपगुहन अंग की ही शिक्षा है कि आपके वितराग मार्ग में अगर कोई चलते चलते कोई गलती करता है तो आपको बाहर कहने की, डिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं। देखो भैया, डॉक्टर साहब के यहां जाता है कोई पेशेंट, उसको टीबी है या कि मान लो कैंसर हो गया, तो डॉक्टर साहब क्या माइक लगवा करके और फिर सब में स्पीकर से बोलते हैं क्या, हल्ला करते हैं क्या? देखो तो इनकी लक्षण, इनको टीबी हो गई, देखो तो इनकी लक्षण, इनने क्या करो और इनको कैंसर हो गया, ऐसा कहता है क्या? बल्कि उस पेशेंट को भी नहीं बताता, उसके घर के परिवार के लोगों को भी नहीं बताता, सब कुछ डायग्नोस करता है और डायग्नोस के बाद क्या उसका रेमेडी हो सकती, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता, वो लिख देता है। पूछता है पेशेंट कि डॉक्टर जा तो बताओ कि हो का गो, कहले कछु नहीं, ठीक हो जाए, 8 दिन दवाई खाओ सो सब अच्छो हो। 8 दिन के बाद जब थोड़ी राहत हो जाती है उसको, तब फिर धीरे से डॉक्टर साहब कह देते अब होशियारी से चलियो, अच्छे से अपना खान पियन और अपना जीवन बनाना, तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा रोग हो गया था लेकिन अब कंट्रोल में आ गया। देखो पहले भी कह सकते थे लेकिन नहीं कहा। जिनदत्त सेठ के बारे में या जिनेंद्र भक्त सेठ के बारे में कैसी घटना प्रथमानि योग में आती है? जिनेंद्र भगवान के भक्त थे वो, उनके यहां पर मंदिर था और मंदिर में मणि लगी हुई थी जिसके प्रकाश में पूरे मंदिर को जगमगाने वाला प्रकाश वो मणि देती थी। लेकिन उस मणि पर एक चोर का मन डोल गया, उसने सोचा कि चोरी तो नहीं की जा सकती मणि की, कैसे बहुत पहरा है, पहले अपन विश्वास जीतो पंडित इनको सेठ जी को। तो कैसे जीते विश्वास? सेठ जी का, जिन भक्त सेठ जी का बहुत विश्वास है साधु और त्यागी वृत्तियों के प्रति, अपन भी त्यागी वृत्ति बन जाओ। सो वो बन गया ब्रह्मचारी, था तो चोर लेकिन वेश धारण कर लिया उसने ब्रह्मचारी का और खूब सेवा करने लगा, अपने व्रत नियम बिल्कुल एकदम बढ़िया से। तो ने भी कहा कि भैया आप अच्छी वचन का कर ले, हमारी रेते मंदिर में रहो। सुजा तो चाहता ही है तो वो मंदिर में रहने के लिए कह दिया, सो मंदिर में ही उसमें रुक गया वो।
और इस फिराक में कि कब मौका मिले और मैं मणि चुरा करके गायब हो जाऊं। एक दिन ऐसा मौका आ गया, सेठ जी किसी काम से अपने दूसरे स्थान पर जाने के लिए तैयारी करने लगे और चले भी गए। थोड़ी दूर 10-20 किलोमीटर पहले तो बैलगाड़ियों से जाते थे तो इतने ही चल पाएंगे, तो 10-20 किलोमीटर दूर उनका पड़ाव जो भी होता है वो लगा, वहां तक सेठ जी निकल गए। अब सेठ जी तो यहां पर घर में है ही नहीं, ऐसा जान करके उस ब्रह्मचारी बने चोर ने मणि वहां से उठा ली और उठा करके मुट्ठी में दबा करके भागा। लेकिन उस मणि का प्रकाश मुट्ठी में जो स्पेस थी उस स्पेस से निकल करके बाहर दिखने लगा, तो जो पहरेदार थे उन्होंने कहा एक तो मंदिर में अंधेरा हो गया जो हमेशा प्रकाश रहता था, तो मणि यहां से गायब हो गई, एक तो ये चीज और मणि का प्रकाश इसके हाथ में से दिखाई पड़ रहा, तो सब उसके पीछे भागे पकड़ने के लिए। वो भागते भागते अब उसने सोचा कि अब तो पकड़े गए सो मरे गए। वो दौड़ते दौड़ते और सेठ जी के पास पहुंच गया। सेठ जी ने मणि लेकर के उसे आते देख लिया, वो जान गए सेठ जी कि इसने मणि चुराई है, लेकिन इसके पीछे सैनिक दौड़ रहे हैं, मुझे तो धर्म की रक्षा करनी है, धर्म पर लांछन आ जाएगा, इस व्यक्ति पर नहीं, इस व्यक्ति ने जो वेश बना के रखा है उस वेश में ये काम शोभा नहीं देता। ऐसा विचार करके सेठ जी अपने दृष्टि की निर्मलता से क्या बोले सबको, अरे तुम लोग सब इनका पीछा कर रहे हो पहरेदार, जाओ जाओ हमने ही ब्रह्मचारी जी से मणि मंगवाई थी, लाओ लाओ ब्रह्मचारी जी आप मणि दे दो, मैं दूसरी जगह जा रहा था इसलिए मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ब्रह्मचारी जी को चुपचाप अपने पढ़ाव में मैंने रोक लिया, उनका अंदर कर लिया बड़े सम्मान के साथ और बाकी सब पहरेदारों को बाहर कर दिया। और फिर जब अकेले ब्रह्मचारी और सेठ जी रह गए तब ब्रह्मचारी का धीरे से कान पकड़ करके कहा कि आप ब्रह्मचारी हो, आपके लिए चोरी शोभा नहीं देती। तब कहा दोष है ये जान रहे हैं, लेकिन दोष भी कब कहना, सुधारने के लिए एक तो गिराने के लिए होता है कि मैं दूसरे के दोष इसलिए देख रहा हूं क्योंकि दूसरे को नीचा दिखाऊंगा, वो दृष्टि नहीं होती सम्यक दृष्टि की, उसमें से दोष निष्कासित करने की दृष्टि होगी तभी उसके ये उपगहन नाम का गुण आएगा। तो सेठ जी ने उस ब्रह्मचारी वेश में ये चोरी शोभा नहीं देती ये तो दोष है, इसको सबके सामने भी उजागर कर सकते थे लेकिन इससे तो धर्म की ही हंसी होगी, ऐसा सोच करके उन्होंने उस ब्रह्मचारी को एकांत में समझाने की कोशिश करी और वाकई में वो समझ करके और फिर चोरी से मुक्त होकर के वास्तव में ब्रह्मचारी बन गया। ये भी उपगुहन का ही एक कहना चाहिए विशेषता है कि अपन उपगुहन के द्वारा दूसरे के दोष ढक करके भी उन दोषों को निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में तो अपन दोषों को उछालने की प्रवृत्ति है, दोष नहीं भी है तब भी उनको उछालेंगे, अपन गुण दोषों का विचार नहीं कर पाते कि क्या गुण है क्या दोष है, जो स्वाध्याय करने वाला होगा वही गुण और दोष का विचार कर पाएगा कि क्या गुण है क्या दोष है, दोष गुणन को कैसे बिन जाने कैसे तजिए गहिए, आपको अगर दोष और गुणों का ज्ञान नहीं है तो उन्हें कैसे आप कह सकते हैं, कैसे आप ग्रहण कर सकते, कैसे आप छोड़ सकते। आगम में लिखा हुआ है कि एक सम्यक दृष्टि दो योग्यताओं से युक्त है, आज्ञा प्रधानी भी होता और परीक्षा प्रधानी भी होता, ऐसा नहीं कि बाबा बाग प्रमाण जो कछु कह जा रहे सब मानत जा रहे, ऐसा नहीं होता, परीक्षा प्रधानी भी होता। आगम में क्या लिखा है, आगम के अनुरूप कह रहे हैं या कि आरंगम से विरुद्ध कह रहे हैं कर रहे हैं, तो उसके लिए सावधानी पूर्वक सचेत कर देगा, उसमें सम्मिलित नहीं होगा। सबसे बढ़िया उपेक्षा, जिसको आचार्य कहते हैं कि उपेक्षा संयम है अपना, हम न निंदा करेंगे न प्रशंसा करेंगे, हम उससे दूर हट जाएंगे, ये चीज हमारे लिए आगम के योग्य नहीं है। अपन लोग निंदा भी करेंगे और साथ में भीड़ भी उसके साथ में जोड़ते चले जाएंगे तो और उसको माने अपने कार्य ठीक है ऐसा उसको लगेगा और वो देख करके उसी गलत कार्य को ही करता जाएगा। अगर गलत कार्य को रोकना हो तो आप उसका सहयोग मत करिए, देखें फिर अपने आप, जब अकेला थकेला रह जाएगा तो अपने आप उस वह समझ करके कि ये तो गलत कार्य है, मुझे इसे छोड़ना चाहिए, तब लोग मेरा साथ देंगे, ऐसा सोच करके वो गलत कार्य को जैसे ही छोड़ दे, आप उसके साथ तो हैं, आपने तो उसका साथ, गलत कार्य का साथ छोड़ा था, आपने उस व्यक्ति का साथ थोड़ी छोड़ा था, क्योंकि वो तो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, वितरागता और अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है, उसमें से दोष निष्कासित करने के लिए अपन ने ये स्टेप उठाया था। ऐसा सम्यक दृष्टि, जिसकी दृष्टि निर्मल है, वो ऐसा विचार करके और दोषों के प्रमार्जित करने के लिए अपने भी और दूसरे के भी हमेशा तत्पर रहता है। भैया अपनी दृष्टि बाहर ही रहती है, भावों पर नहीं रहती। अपन बाहर बाहर देख करके और विचार कर लेते हैं, जानते भी हैं, सामने वाला भी जानता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से वो भी मंजूर नहीं करता कि मैं गलत हूं। कैसे कह दूं कि मैं गलत हूं? कौन कह देगा? कोई नहीं मानता अपनी गलती कि मैं गलत हूं। सम्यक दृष्टि होगा तो वो बहुत शान से मान लेगा, वो कहेगा हां गलत हूं, मैं इसको सुधार लूंगा। थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन मुझे अपनी गलती का आपने एहसास कराया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था, एक बार शाहपुर में किसी के यहां पर आहार हुए, और आहार होने के बाद लोग तो छिद्रान्वेषी हैं, उनकी भी क्या गलती, उनको संस्कार ही ऐसे, सुजल्दी से आनके कह गए, कैसे पहली बार उनके चौका लगो तो सुजल्दी से चुगल गए कि महाराज आपके आहार ऐसे व्यक्ति के हो गए जो उन व्यक्ति शराब पीते। अब हमको तो बड़ा दुख हुआ कि बताओ व्यसन का भी त्याग नहीं है। अब कोई बात नहीं, सबके सामने हमने यही कहा कि हमारी गलती हो गई, सामने वाले की क्या गलती, हमारी गलती हो गई, हम प्रायश्चित कर लेंगे कि ऐसे व्यक्ति से हमने उसके चौके में आहार ले लिया। ये बात उनके घर के लोगों को सुनने में आ गई कि महाराज जी को ये बात मालूम पड़ी है कि किसी व्यसनी व्यक्ति के यहां आहार हो गया है, इसलिए प्रायश्चित वो स्वयं ही ले लेंगे। 1:30 बजे रात को वो व्यक्ति वापिस लौटा अपने घर, आहार दे करके तो चला गया था, क्योंकि ट्रक चलाता था वो। जब लौट के आप वापस आया, घर के सब बच्चों ने और सब ने कहा कि आज अपने हाँ, आज तो अपने बारे में किसी ने महाराज को ऐसा बोल दिया, महाराज ने तो और प्रायश्चित करने का सोच लिया है कि मैं तो कल ही प्रायश्चित कर लूंगा। तब उस वो व्यक्ति सोया नहीं 1:30 बजे, और आकर के मंदिर के बाहर बैठ गया कि 4 बजे जैसे ही दरवाजे 4:30 बजे उजाला होगा, और दरवाजे गर्मी के दिन में खुल जाते थे, तो जैसे ही दरवाजे खुलेंगे मैं अकेले में पहले नंबर महाराज जी से मिल करके उन्हें बात को क्लियर करूंगा। उस व्यक्ति ने आकर के और मुझे क्या कहा, महाराज जी जिन लोगों ने भी कहा है उन्होंने सच कहा, मैं शराब पीता था, लेकिन माता जी आई थी 1.5 साल पहले, मैंने उनके सामने ही त्याग कर दिया था। तो जिन लोगों को अभी मालूम नहीं है उनकी क्या गलती है, उन्हें तो यही मालूम है कि मैं पीता हूं, लेकिन उन्होंने, लेकिन मैंने उसको 1.5 साल पहले त्याग कर दिया है। आप प्रायश्चित इत्यादि ना लेकर के कृपा करें, और सब लोगों से कह दें कि जिन व्यक्ति ने भी कहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके बीच भी कह सकता हूं कि मैं 1.5 साल पहले तक व्यसन करता था, लेकिन मैंने माताजी से नियम ले लिया जीवन भर के लिए, अब मैं शराब इत्यादि जो व्यसन है, खोटी आदतें हैं, वो सब नहीं करूंगा। बताइए, ऐसा बहुत साहस होना बहुत कठिन है कि किसी व्यक्ति के दोष अगर कोई कहे तो उसको कह रहा है कि दोष कहने वाला गलत नहीं है, दोष कहने वाला ठीक कह रहा, उसको धन्यवाद, लेकिन उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। यो यस न जानाती सत्तस्य निंदाम करोति, नीति वाक्य है, जो जिसके बारे में नहीं जानता वही निंदा करता है। निंदा करने वाले को पहले देख लेना चाहिए कि मैं ठीक ठीक जान रहा हूं कि नहीं। इस तरह यदि अपनी दृष्टि निर्मल है तो अपन आसानी से दूसरे के दोष देखे बिना भी दूसरे को उसमें से दोष निष्कासित करने की दृष्टि से देख करके अपना भी और दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। भैया दूसरे का कल्याण हो या ना हो वो उसके हाथ में है, वो तो दोष करके अपना नरक निर्मित कर ही रहा है, लेकिन अपन उसके दोष दूसरे से कह करके और दोषों को देखने की प्रवृत्ति अपने भीतर पैदा करके अपना क्यों आहित करें। ऐसा विचार अपन को करना चाहिए कि दूसरा दोषी है, वो अपने हाथ से दोष करके और अपना पतन कर रहा है, मैं उसके दोषों को सबके बीच फैला करके और क्यों अपना स्वयं में पतन करूं। ऐसा विचार करके और अपन को दूसरे के दोष एक तो देखना नहीं चाहिए, अगर दिख भी जाए तो कहने की भावना नहीं होनी चाहिए, अगर कहने की बहुत भावना हो तो इससे उससे नहीं, उसी व्यक्ति से जिसके आपने दोष देखे हैं उससे प्रेम से विनयपूर्वक एकांत में जाकर के अपन निवेदन करेंगे कि भगवान ऐसे दोष आपके भीतर दिखाई पड़ते हैं, क्या सचमुच मेरी आंख ही तो नहीं गड़बड़ देख रही है? आप सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि एक बार आप फिर से आगम में देख करके इसका एनालिसिस करके अगर ये गलत हो तो इस प्रवृत्ति को छोड़ दें। ऐसा अगर अपन कहेंगे तो सामने वाला अपने दोषों को निकालने के लिए, अपने दोषों को दूर करने के लिए स्वयं उत्सुक होगा, वरना तो हर व्यक्ति करता क्या है, अपने दोष छिपाने के लिए दूसरे के दोष बताने लगेगा बहुत जल्दी। अपने दोष छिपाने के लिए बेबी तो करत है, बेबी तया सो करत है, बेबी तया सो करत है, आपका करत हो जाए नहीं बताएगा वो। आपने अगर ये जैसे अपन मैंने सरल सी सहसी चीज है, अगर अपन को अपन कहें कोंग से कि हमारा तो बहुत हाथ पिरा रहा हो तो अपन फौरन क्या कहती, हाँ सुबह समय पाँव में भी दर्द है, सिर में भी दर्द है। अब लो वो अपना दुख बता रहा हो तो सुबह को तो सोना नहीं है और अपने बताने लगी वो, ऐसा होता सहज रूप से होता। अपन लोगों को ये आदत हो गई दूसरे के, दूसरा आपने दोष। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी घटना है बस फिर इतना ही खत्म करता हूँ, बाद में फिर एक और चीज थी वो बाद में सुना दूंगा, पर वो जो छोटी सी घटना है, एक राजा साहब थे तो उनका बर्थडे था, उनका जन्मदिन था, तो जन्मदिन पर जितने भी उनके मातहत सामंत थे, बड़े लोग थे, पदाधिकारी थे, वो सब भगवान से प्रार्थना के लिए उन्होंने सोचा कि आज तो राजा साहब का जन्मदिन है, अपन तो धर्म ध्यान करेंगे और राजा साहब के लिए निवेदन भी करेंगे कि राजा साहब हमारे बहुत समय तक जिए, बहुत अच्छे राजा हैं। ऐसा सब इकट्ठे हुए पदाधिकारी और भगवान की पूजा करने लगे। राजा के पास शाम को एक व्यक्ति चुगल करके आया कि फलाना जो सामंत है वो बिल्कुल भी आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो तो यहां वहां देख रहा था, वो उसका मन प्रार्थना में लग ही नहीं रहा था, आपके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है, आपके प्रति अनुराग नहीं है, ऐसा उससे, और आप उसके लिए बहुत चाहते हो, सबसे बड़ी चीज चाहती कि आप उसको बहुत चाहते हो और देखो तो आप ही के काम को नहीं है और आप इतना चाह रहे हो उसको। ये चुगली उसको ईर्ष्यावश दूसरे ने कर दी, जबकि दोष नहीं था, फिर भी उसने राजा के कान भर दिए। अब राजा को भी एक बार लगा कि यार हम बेकार में इसको इतना प्रेफरेंस देते हैं, ये हमारे प्रति ही श्रद्धा नहीं रखता, अनुराग नहीं रखता, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सब लोग तो प्रार्थना कर रहे थे दीर्घ जीवन के लिए, लेकिन बता रहे हैं कि उसका तो कोई कंसंट्रेशन नहीं था, यहां वहां देख रहा था, उसने तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करी दीर्घ जीवन की। तो पास में मंत्री जी बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज निर्णय लेने से पहले एक बार सारी बात को जान ले, हर पक्ष से बात का विचार कर ले, आपने एक ही पक्ष को सुना है। ऐसा सुनते ही मंत्री जी की बात पर गौर करके राजा साहब ने कोई निर्णय नहीं लिया और जाकर के पता किया। सारी बात पता करने के बाद मालूम पड़ा कि जिस सामंत ने और राजा को यह बात कही है उस सामंत का मन कहां था, क्या वो यही देख रहा था कि जे कंसंट्रेशन के साथ प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, तो आप क्या कर रहे थे? अपने दोष नहीं दिखाई पड़े, दूसरे का दोष जब अपन देखने लगते हैं तो अपने वह भी दोष है कि मैं तो स्वयं अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा जब मैं दूसरे की तरफ दृष्टि रख रहा हूं। अपन दूसरे की तरफ, दूसरे के दोषों की तरफ दृष्टि रख के अपने गुणवत्ता से खुद ही चूक जाते हैं, अपने दोषों को भी नहीं देख पाते हैं, बल्कि अपने आप को निर्दोष मान करके अपने दोषों को दूर भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि भाई एक तो दोष देखने की प्रवृत्ति से अपन बचें, अगर गुण और दोष का विचार करते समय अगर दोष दिखाई पड़ जाए तो उसे फैलाने की कोशिश ना करें, और अगर फैलाने की अगर कहने का मन हो जाए तो फिर उसी व्यक्ति से कहें जिसके की दोष देखे हैं, या फिर उसके मित्र से या उसके गुरु से जो कि उसके दोष निकाल सके उससे ही कहें। इससे ज़्यादा अपन और अधिक कुछ भी दोषों के बारे में विचार नहीं करें। दूसरे व्यक्ति के बारे में सच के मार्ग पर चल रहा है, मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है, वीतराग है, वीतराग मार्ग पर चल रहा है, अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है, ऐसा विचार करके धर्मानुरागवश उसमें से वो दोष निकालने की दृष्टि से अपन उन दोषों पर विचार करें, उसे नीचा गिराने की दृष्टि से नहीं, उसे और ऊंचा दोषों से रहित करके और शुद्ध करने की दृष्टि अपनी हो, तभी अपनी दृष्टि उपगुहन अंग से युक्त सच्ची दृष्टि कहलाएगी। यही उपगुहन अंग का गुण है, अपने भीतर ऐसा उपगुहन अंग आवे और अपनी दृष्टि भी निर्मल हो, इसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ,
अर्ध निशा का सन्नाटा मन में वन चारे चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तपशैल नदी तट पर तर तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान पिया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़िया,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलिया,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दे जग की निधिया,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई,
नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिनाथ महम,
श्री आचार्य श्री विद्यासागर महाराज संगस्त मुनि श्री क्षमासागर महाराज मुनि श्री भूसागरी महाराज चरणों में अर्घ्य निर्पामित स्वामी।
मिथ्या तम नास वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो मानु शिव कानी है,
द्रव्य जान वेखो बंद विधि ध्यान वेखो स्वपर पहचान वेखो परम प्रमाणी है,
अनुभव बताए देखो दीवों के जताए देखो काहू न सताए देखो भव्य उर आनी है,
जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो सुख विस्तार देखो यही जिनवाणी है,
वाणी के ज्ञान पे सूझे लोका लोग सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो, हे दिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।